I hope you remember this is Bible study.
मैं ये समझता हूँ कि आपको पता होगा कि आज ये हमारी बाइबल स्टडी है.
So this is not evangelism.
ये मुबशराना मीटिंग नहीं है.
This moves more slowly.
जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है.
And it makes you think.
लेकिन ये आपको सोचने का सबब बनाएगी.
As we dig into the Word of God.
जबकि हम खुदा के कलाम की गहराई के अंदर जाएंगे.
When I understood this subject we're going to talk about,
जब मैंने इस मज़मून के बारे में जिसमें आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं गौर किया,
so many questions for me.
तो मेरे लिए बहुत सारे सवालों को जवाब देना मेरे सामने आया.
I think it'll answer questions for you also.
और मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी सवाल और जवाब का मौका होगा.
Matthew 24.
मत्ती की अंजील और उसका 24वां बाब.
Verse 24.
और उसकी 24वीं आयत से पढ़ेंगे. मत्ती की अंजील उसका बाप 24वां और उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे.
For there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders insomuch that if it were possible they shall deceive the very elect.
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुजीदों को भी गुमराह कर लें.
Let's pray just a minute again, one more time.
आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें.
Lord Jesus,
प्यारे आसमानी बाप,
as we open your word,
जब कि हमने तेरे कलाम को खोला,
may you open our mouths in the pulpit,
ओ खुदावंद तू हमारे मुंहों को खोलने का सबब बन,
and open the ears and hearts in the congregation,
और हाजर जमात के दिलों और कानों को खोल ऐ खुदावंद,
may you speak to us this morning out of your word,
ताकि तू अपने कलाम में से हमारे साथ आज गुफ्तगू कर सके.
Yourself,
जलाल देना चाहते हैं
edify your children.
और अपने बच्चों में उसका इजहार कर.
We ask it in Jesus name.
यीशु मसीह के नाम में.
Amen.
Amen.
We're going to see a principle here that maybe you've never noticed before in the Bible.
आज हम एक असूल के तहत बात करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, शायद पहले आपने बाइबल में उसे कभी ना देखा हो.
But first we have to understand what this verse just told us.
तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह कलाम का हवाला जो हमने पढ़ा है इसमें क्या हमें बताया गया है.
For there shall arise false Christ.
क्योंकि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे.
It did not say false Jesuses.
उसने ये नहीं कहा कि बहुत से झूठे यीशु उठ खड़े होंगे.
It says false Christ.
उसने कहा बहुत से झूठे मसीह.
That's anointed ones.
जिन पर के झूठा मसा होगा.
So here is false anointed ones.
यहाँ हम देखते हैं कि झूठे मसा के नीचे.
And false prophets.
और झूठे नबी.
Showing signs and wonders.
जो के निशानात और मौजजात और कुदरत को दिखाएंगे.
And yet it would almost deceive the elect.
तो ऐसा मुमकिन होगा कि अगर मुमकिन हो तो बरगुजीदा भी गुमराह हो जाएं.
Now these are principles of God.
ये खुदा के असूल हैं.
Now remember, God watches over His word to perform it.
खुदा हमेशा अपने कलाम पर ध्यान रखता है कि उसे पूरा करे.
So we're going to just take some examples now of false Christ.
आप हम झूठे मसीह के बारे में कुछ तमसीलें मिसालें देखेंगे.
False anointed ones.
जो आखिरी घड़े के झूठे मसीह.
First Kings.
पहला सलातीन.
Chapter 22.
सलातीन की पहली किताब और उसका.
And we'll start at verse 13.
उसका 22वां बाब and verse
13.
और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे. पहला सलातीन 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत.
King Ahab is wondering whether to go up to this battle.
अखियब के बादशाह जो है वो सोच रहा था कि किस तरह इस लड़ाई में जाए.
And he's the king of Israel.
और आप जानते हैं कि वो इसराइल का बादशाह था.
He invites King Jehoshaphat, which is the king of Judah.
और उसने यहूदा के बादशाह को बुलाया जो यहूदा का बादशाह था, जो बादशाह था, ताकि वो उसके साथ इस लड़ाई में चढ़ाई करे.
Now if you watch your shadows in the Old Testament,
अगर आप ये पुराने साए को पुराने ऐतनामे में देखें,
the Bible said the Old Testament was a shadow of things to come.
क्योंकि आप देख जानते हैं कि बाइबल में ये लिखा है कि पुराना ऐतनामा आने वाली चीजों का अक्स था.
We find that the one nation of Israel,
हम देखेंगे कि इस्राएल जो एक कौम थी,
was divided into two.
वो दो हिस्से बन गई.
Like the one message of Christianity,
जिसके पास एक के पास मसीहत का पैगाम था,
was divided into two.
वो दो हिस्सों में बट गई.
Catholicism and Protestantism,
जो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को से जाहिर हुई.
And so in the shadows here,
यहाँ साए में हम देखते हैं,
we will. If we were to go more deeply into it, we would find that Israel types Romanism and
Christianity,
Protestantism types is typed in Judah, tribes of Judah.
जब हम और गहराई में जाएंगे तो इन दोनों ग्रुपों से हम देखेंगे कि बनी इसराइल की मुशाबत रोमन कैथलिक के साथ है और यहूदा के कबीले की मसीहत के साथ है.
It was Judaism that had the proper place of worship. The tribes of Judah.
क्योंकि यहूदा के कबीले के पास एक ऐसी जगह थी, ठीक जगह जहां वो इबादत कर सकते थे. वो यरूशलम में रहते थे.
The word goes out from Jerusalem.
और आप जानते हैं कलाम यरूशलम से निकला.
So they would type the Protestant side.
ये प्रोटेस्टेंट की नुमाइंदगी करता है.
Whereas Israel.
लेकिन इसराइल.
They sometimes set up idols to worship them.
बाज दफा वो अपने लिए बुत तराशते हैं, रख लेते हैं उनकी इबादत करने के लिए.
Just like Romanism.
जिस तरह के रोमन कैथलिक ने किया.
Now we're not going to talk Protestantism, Romanism now.
अब हम Protestant और Roman के बारे में बात करने को नहीं हैं.
Remember, we're looking at false anointed ones.
अब हम झूठे नबियों के बारे में देखना चाह रहे हैं.
So when the king of Israel wants Jehoshaphat to go to war with him,
और जब बनी इसराइल ने ये चाहा कि जो यहोवा जो है उसके साथ जाए,
then Jehoshaphat says, "But shouldn't we consult the Lord?"
तो उसने कहा कि हम खुदा से क्यों ना इस बात को पूछें?
And Ahab says, "Oh, I've got a school of prophets."
तो अखियब ने कहा, "ओ मेरे पास तो अंबिया है."
He had his own seminary over there.
उसकी अपनी वहाँ सेमिनरी थी.
And he says, "We'll go consult them."
तो उसने कहा कि उन नबियों के पास जाएं और उनसे मशवरा करें.
And they tell him, "Go up, the land is yours. Go up, take the land, fight back the enemy."
और जब उन्होंने उसे पूछा, तो उसने कहा, "जाओ और उस ज़मीन पर कब्ज़ा करो, उसे वापस छीन लो."
But Jehoshaphat was a little more spiritual.
लेकिन यहोशुवत ने इस बात को उसका ज़्यादा तर्जुबा था उसे.
But haven't you got one more prophet?
तो उसने कहा, "ओ देखो, तुम्हारे पास एक और नबी भी है."
And Ahab says, "Well, the whole school has said that God's with me."
तो उसने कहा कि पूरी जमात जो है नबियों की, वो कह रही है कि खुदा हमारे साथ है.
But Jehoshaphat felt, "Nah, something." Not right here.
तो यहोशुवत ने ये महसूस किया कि यहाँ कोई चीज ठीक नहीं है.
So they send a messenger to go get Micaiah.
तो उसने पैगाम भेजा कि मीका नबी को बुला कर लाएं.
Now verse 13.
13वीं आयत.
And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, "Behold, now the words of the prophets declare good unto the king with one mouth. Let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good."
और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था, उससे कहा, देख, सब नबी एक जबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं. सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो, और जो तू खुशखबरी ही देगा.
Now man cannot put words in the mouth of a true prophet.
आप जानते हैं कि इंसान हकीकी नबी के अंदर उसके मुंह में हकीकी बात नहीं डाल सकता.
It has to be God's word coming out of the mouth of the
prophet. ये खुदा है जो कि नबी के मुंह के अंदर दुरुस्त बात डाल सकता है.
Amen.
Amen.
Verse 14.
इसकी 14वीं आयत.
Micah said, "As the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak."
मिकाया ने कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए, मैं वही कहूंगा.
So he came to the king, and the king said unto him, "Micaiah, shall we go up against Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear?"
जब वो बादशाह के पास आया, तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जलदाद से लड़ने जाएं या रहने दें?
Now, and the king said unto him,
और बादशाह ने उससे कहा,
"How many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord?"
मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए?
And he said, "I saw all Israel scattered upon the hills as sheep that have not a shepherd, and the Lord said, 'These have no master. Let them return every man to his house in peace.'"
तब उसने कहा, मैंने सारे इसराइल को उन भेड़ों की माने जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परगंदा देखा, और खुदा ने फरमाया, उनका कोई मुल्क नहीं, मालिक नहीं. सो गो अहेड.
एंड द किंग ऑफ इज़राइल सेड अंटू यहोशाफात,
और वो सब अपने अपने घरों को सलामत
tell you that he would prophesy no good concerning me but evil.
यहोशुवत ने कहा, मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशगोई करेगा.
Now here's Micaiah speaking.
अब देखिए मिकाया जो है वो गुफ्तगु कर रहा है.
Now we can learn a great lesson right here.
इसमें से हम एक बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं.
And he said, "Hear you therefore the word of the Lord."
उसने कहा, अच्छा तो खुदा के सुखन को सुन ले.
I saw the Lord sitting on his throne and all the host of heaven standing by him on his right and on his left.
میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائنے اور بائیں کھڑا ہے.
And the Lord said, who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead?
اور خدا نے فرمایا کہ کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلداد میں کھیت آئے.
Now Elijah had prophesied that Ahab must die.
ایلیا نے اس بات کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ اخیب جو ہے وہ ضرور مرے گا.
And now God is going to bring the words of his prophet to pass.
اب خدا نبی سے فرمودہ کلام کو پورا کرنے کو ہے.
And one said on this manner and another after that manner.
اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا.
And there came forth a spirit that stood before the Lord and said, I will persuade him.
لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی.
And the Lord said unto him, wherewith?
خداوند نے اسے پوچھا کس طرح.
He said, I will go and be a lying spirit in the mouth of all these prophets. And he says, go, you will succeed.
اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. اس نے کہا تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی.
Verse 23, now therefore behold, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets, and the Lord has spoken evil concerning thee.
23 آیت, روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر, سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دے دیا ہے.
Now here's a school of prophets.
اب دیکھتے ہیں یہ نبیوں کا ایک سکول ہے.
And they were anointed.
اور ان پر مسا جو تھا.
But in this case by a lying prophet.
لیکن وہ جھوٹے مسیح نبی تھے.
So they didn't pick up whether this was God's spirit or some other spirit.
وہ اس کے اندر فرق محسوس نہ کر سکے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے یا کہ بری روح ہے.
All they knew was we're anointed.
ہاں, سب کو یہ جانتے تھے کہ ہم مسا کے نیچے ہیں.
And it felt good to tell the king, go up, you'll prosper.
اور ان کو یہ اچھا لگتا تھا کہ بادشاہ کو یہ خوشخبری دے, جا خداوند تیرے ساتھ ہے.
And then a true prophet came and said that's a lying spirit on those men.
تو پھر حقیقی نبی نے آ کر اس کا نمائندگی کی کہ یہ جھوٹی روح بہکانے والی روح ہے جو تجھ میں تجھ پر نبوت کر رہی ہے.
Okay, now there's an example of men anointed with a wrong spirit.
اب ہم یہاں ایک مثال دیکھتے ہیں کہ آدمی جب ایسے جھوٹے مسا کے نیچے ہوتا ہے.
Now we're going to look at another example.
ایک اور مثال بھی ہم دیکھیں گے.
We won't go to the Bible, you'll remember it.
آپ بائبل میں سے نہیں پڑھیں گے, آپ کو پتا ہے.
There was a prophet named Balaam.
ایک بلام نبی کے نام سے نبی تھا جسے آپ جانتے ہیں.
King Balak wanted him to prophesy evil against Israel.
اور بلک بادشاہ نے اس زمانے کے بادشاہ نے چاہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف نبوت کرے.
And he first said, no, I can't go because God told him don't go.
پہلے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ مجھے خدا نے منع کیا اس لیے میں نہیں جاؤں گا.
And then some men came to him again.
اور پھر کوئی آدمی پھر اس کے پاس آیا.
And he approached God again.
اور اس نے پھر خدا کی طرف اپنا رخ موڑا.
Now he already had an answer of the perfect will of God.
آپ جانتے ہیں کہ پہلے خدا نے اپنی کامل مرضی اس پر ظاہر کر دی تھی کہ نہ جا.
Now here he is approaching God again.
لیکن وہ پھر دوبارہ ایک بار کوشش کرتے منگن کی ہر جو منگ لیے.
God tells him, okay, go ahead and go up.
اور خدا نے اسے کہا جا اور ایسا کر.
And so they go up and he offers 7 rams, 7 bullocks.
اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 7 بیلوں کی اور مینڈوں کی قربانی چڑھائی.
Exactly a proper sacrifice.
یہ ایک بالکل کامل قربانی نظر آتی ہے.
He calls on God.
اور اس نے خدا کی طرف پکارا.
And he begins to prophesy over Israel.
تو اس نے اسرائیل کے خلاف نبوت کرنی شروع کی.
And his prophecy is exactly true.
تو لیکن جو وہ کر رہا تھا وہ بالکل حقیقت تھی.
And the king is very upset.
تو اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے نبی کے معرفت بادشاہ بڑا اپسٹ ہوا, وہ بڑا خلاف ہوا.
I wanted you to speak evil.
بادشاہ کہنے لگا میں تے تینوں اس واسطے بلایا کہ انہاں دے خلاف گل کر, لیکن تو تے ہر گل اچھی انہاں دسی ہے, میرے بارے تے گل نہیں کیتی.
Well, let's go to another place and we'll prophesy again.
تو اس نے کہا چل میں تینوں ایک اور جگہ لے چلنا, اوتھے شاید تو اچھی گل کرے.
So they moved around the camp of Israel.
تو پھر اسرائیل کے کیمپ کے اندر گھومتے رہے.
And every time he prophesies, it's good.
اور جب کبھی آتا وہ اسرائیل کے فیور میں تھی.
Now watch this now.
اس کو غور سے دیکھیے.
Here's a prophet.
یہاں ایک نبی ہے.
His prophecies are accurate.
اس کی جو نبوتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں.
So he's anointed with a true spirit.
اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر مسا جو ہے وہ خدا کا ہے, روحانی مسا.
But he himself is trying to sell his gift and gain favor with the king.
ਮਸਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹਿਸ ਗਿਫਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ।
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ।
ਅਭੀ ਇਸੀ ਪਰ ਹਮ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੀਏ।
ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 11
ਰੋਮੀਓ ਕੇ ਨਾਮ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਾ ਖਤ 11ਵਾਂ ਬਾਬ।
Now we saw that God was watching over his word to bring it to pass regarding Ahab.
Hum jante hain ki Ahab ke bare mein jo peshgoi ho chuki thi Khudamand usse pura karna chahta tha.
And he had said, how can we cause Ahab to go up and fall?
Usne dekha ki kaise mumkin hoga ki Ahab ko aage le jaye aur wo gire.
And so God allowed a lying spirit to go get in the mouth of those prophets.
Isliye Khuda ne ek buri rooh ko un nabiyon ke munh mein bheja taaki aisa waku mein aaye.
So it's God bringing to pass his word.
Ye Khuda hai jo apne kalam ko pura karta hai.
Now in Romans 11
Romeo 11 bab
verse 1
uski pehli ayat,
I say then has God cast away his people?
بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟
God forbid.
ہرگز نہیں.
Verse 2.
دوسری آیت.
God has not cast away his people which he foreknew.
خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا.
And then he reminds him of Elijah.
پھر اس کو ایلیا کے بارے میں وہ بتاتا ہے.
Who thought he was all alone.
جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہی اکیلا بچا ہے.
God said, I've kept 7 men to myself.
تو خدا نے کہا کہ ابھی میں نے 7 آدمی بچا رکھے ہیں.
So in the same way, God opened the eyes of some Jews to the Messiah.
اسی لیے خدا نے کچھ نبیوں میں کچھ بنی اسرائیل میں سے کچھ آدمیوں کی آنکھیں کھولی تاکہ وہ نبی کو دیکھ سکیں، مسیح کو دیکھ سکیں.
Verse 5.
اس کی پانچویں آیت.
So then is this present time also there is a remnant according to the election of grace.
پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں.
Verse 7.
ساتویں آیت.
What then, Israel has not obtained that which he seeketh for, but the election has obtained it, and the rest were blinded.
یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور بات کی سخت ہو گئے کیے گئے.
And now he's going to quote a prophecy out of Isaiah 29.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسعیاہ 29 باب کی ایک پیشگوئی یہاں بیان کی جاتی ہے.
According as it is written.
اور جس طرح یوں لکھا ہے.
God has given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, ears that they should not hear unto this day.
Verse 9.
8.
8. 8th سے پڑھیں گے. چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھ سکیں اور ایسے کان جو نہ سنیں. اور داؤد کہتا ہے کہ گو ہیڈ 9.
سو ناؤ اسرائیل از ایٹ دی ٹائم.
اسرائیل اب اس وقت میں ہے.
When this prophecy must be fulfilled.
جبکہ یہ کہا ہوا کلام پیشگوئی کے طور پر پورا ہو جائے.
The prophecy had said they'd have eyes but can't see and ears but can't hear.
اور ہم نے سنا کہ لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتے اور کان ہیں اور وہ سن نہ سکیں.
Now how did God accomplish that?
یہ خدا نے کس طرح سے پورا کیا؟
Mark chapter 4.
مرکز کی انجیل اور اس کا چوتھا باب. مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باب.
And when he was alone, verse 10, they that were about him with the 12 asked him of the parable.
جب وہ ان کے ساتھ اکیلا تھا تو انہوں نے اس سے ایک تمثیل کے بارے میں پوچھا.
Chapter 4, verse 10.
چوتھا باب اور اس کی 10ویں آیت. Yeah, I have read, go ahead.
And verse 11 now.
اب اس کی 11ویں آیت.
And unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without all these things are done in parables.
اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیل میں ہوتی ہیں.
That seeing they may see and not understand.
تاکہ وہ دیکھتے
perceive, excuse me.
تاکہ وہ دیکھ ہوئے دیکھیں اور نہ معلوم کریں.
And hearing they may hear and not understand.
اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں.
Lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them.
ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں.
Now notice,
غور کیجئے.
If they could see what God was doing when he was doing it.
जब वो कुछ कर रहा था और उनको पता चल जाता कि खुदा क्या कर रहा है
and understand what God was doing when he was doing it,
और जब ये कर रहा था और वो समझ जाते कि खुदा क्या करने को है
he said they'll be converted,
तो उसका मतलब है कि वो माफी मांग जाते खुदा उन्हें माफ कर देता
and their sins forgiven them.
और उनके गुनाह माफ हो जाते
That's why it's important that we see in every age what God is doing in our age.
इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम देखें कि खुदा किस वक्त में क्या कर रहा है
So how did he blind Israel?
उसने इसराइल को कैसे अंधा किया?
He did not speak the word clearly to them.
उसने उनके साथ साफ वाज़े अल्फाज में कलाम के सबब से बात ना की.
He spoke in parables.
उसने तमसीलों से उनके साथ बात की.
Because the Bible said they had to be blind.
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उनको अंधा किया जाना जरूरी है.
Why did they have to be blind?
क्यों उन्हें अंधा किया जाना चाहिए?
Because someone had to sacrifice the lamb.
क्योंकि किसी ने तो बर्रे को ज़बह करना था.
Christ had to die.
मसीह को मरना था.
Somebody had to do it.
तो किसी को अंधे होकर ऐसा काम करना पड़ेगा ना?
So God blinded Israel.
इसलिए खुदा ने इसराइल को उसकी कौम को अंधा कर दिया.
Where would we be without the blood of Christ?
ताकि वो जो है खून के बगैर रहें.
So Israel thinking they were doing wrong.
इसराइल ये
doing right.
इसराइल ये समझते हुए कि जो कुछ वो कर रहे थे उस वक्त वो ठीक कर रहे थे.
By crucifying the Christ.
यीशु को मसलूब करने हुए.
And the devil thinking he won a victory.
तो शैतान ये चाहता था कि ऐसा करने से वो फतह पा जाए.
It was exactly the plan of God.
ये बिल्कुल खुदा का प्रोग्राम था.
And so God blinded them.
इसलिए खुदा ने उनको अंधा कर दिया.
So that they would not receive the Messiah.
ताकि वो मसीहा को पहचान ना सकें.
Why would that be?
ऐसा क्यों था?
Because there is a parenthesis in there where we Gentiles must come to salvation.
क्योंकि खुदा के हाँ एक ऐसा वक्त था जिसके सब से गैर कुआम उसकी बादशाह में दाखिल हो जाएं.
Then he'll turn himself back to the Jews again.
तब वो दोबारा यहूदियों की तरफ वापस लौटेगा.
Now,
अगर ऐसा ना होता तो फिर साढ़े वास्ते कोई वक्त नहीं सी.
We would find the same parable in Matthew 13, but don't bother looking there.
इस पर इसी वाक्या को हम मत्ती की अंजील 13वें बाब में देख सकते हैं, लेकिन हम इस पर आगे जाएंगे.
Now 2 Timothy chapter 3.
अब दूसरा तिमोथियस का खत, उसका तीसरा बाब.
Starting at verse 1, it's talking about in the last days.
और verse 3.
Chapter 3, verse 1.
पहली आयत से अगर हम गौर करें तो हमें आखिरी जमाने के बारे में यहाँ एक तस्वीर मिलती है.
And it's talking about the condition of men and their attitudes.
वो वहाँ इंसान और उसके रवैये का जिक्र कर रहा है.
But we're just going to stay with our subject of false Christ.
हम यहाँ अपने उस अनवान पर कायम रहेंगे कि झूठे मसीह आखिरी जमाने के.
Verse 7.
सातवीं आयत.
Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.
और हमेशा तालीम पाती रहती हैं, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती.
Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth.
और जिस तरह के येनेस और जैमरिस ने मूसा की मुखालफत की थी, इसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं.
Men of corrupt minds,
ये ऐसे आदमी हैं,
reprobate concerning the faith,
जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के इतबार से नामकबूल हैं.
Now to understand Jannes and Jambres, we have to go back to the time of Moses.
अगर हम इन दोनों अशखास को जैनस और जैमरिस को समझना चाहते हैं तो हमें मूसा के वक्त में जाना पड़ेगा.
And they were the two court magicians.
और ये जो दोनों बड़े जादूगर थे.
Now they withstood Moses.
लेकिन उनका तअल्लुक मूसा के साथ भी था.
How did they withstand Moses?
वो किस तरह से मूसा के साथ खड़े रहते थे?
He threw down his stick and it became a serpent.
उसने जब अपनी लाठी को फेंका तो वो सांप बन गई.
They threw down a stick and it became a serpent.
तो इन जादूगरों में ने भी फिराउन के महल तख्त के सामने छड़ियों को फेंका, रस्सियों को फेंका और वो सांप बन गया.
Several of the miracles that Moses did.
और जितने बहुत सारे मौजदात जो मूसा ने किए,
they did the same thing.
उन्होंने भी वैसा ही किया.
Now, what was the result of this?
तो इसका नतीजा क्या हो निकला?
The Pharaoh's heart was hardened.
तो इन मौजदात के सबब से फिराउन का दिल जो है वो सख्त हो जाता था.
You're nothing special, Moses.
तो उसने मूसा से कहा, तेरे कोई चंगी और इन्हों वध केड़ी गल है?
My boys can do the same thing.
ऐसी भी तो वही गल करते फिरने, मेरे लोग भी ये कर सकते ने.
But what was the difference?
लेकिन फर्क क्या था?
Moses had a message from God.
आप जानते हैं कि मूसा के पास खुदा का कलाम था.
Jannes and Jambres had no message.
और यमनीस और जैमरी जो हैं, इनके पास कोई का पैगाम नहीं था.
Now it says in the Bible.
अब बाइबल में यूँ लिखा है.
That in the last days.
कि आखिरी दिनों में.
Jannes and Jambres types will appear again.
ऐसे ही लोग दोबारा जाहिर होंगे.
Meaning what?
इसका मतलब क्या है?
They will be workers of miracles.
वो मौजजात के खादिम होंगे.
They will perform the supernatural.
और वो बहुत फौतकल फिक्र चीजें जो हैं वो वकूह में लाएंगे.
Now listen to this.
इसको गौर से सुनिए.
And it is a genuine Holy Ghost anointing.
और याद कीजिए कि ऐसा काम करने के लिए ये हकीकी रूल कुद्दस है जो कर रहा है.
Now I'll prove that in a minute.
मैं इसको एक मिनट में साबित करूंगा.
But लेकिन no message.
लेकिन उनके पास कलाम नहीं है.
They just perform the supernatural.
वो फोकल फितरत काम तो कर रहे हैं.
And they want to draw the people to themselves.
और लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, मुतवज्जो करते हैं.
They want to exalt their own ministry.
वो अपने पे खिदमत को बयान करना चाहते हैं.
But when Jannes and Jambres was on earth.
लेकिन जब ये दोनों शख्स जैनस और जैम्बरी जमीन पर थे.
There was the prophet with a message.
तो वहाँ एक नबी भी था जिसके पास खुदा का कलाम था.
And we've had the exact same thing in our age.
और हमारे जमाने में बिल्कुल ऐसा ही है.
God has sent a prophet.
खुदा ने एक नबी को भेजा है.
He performed the supernatural.
उसने फोकल फितरत काम किए.
Very miraculous things happened.
और बहुत अजीब चीजें वकूह में आईं.
And he starts delivering his message.
और वो अपने पैगाम को देना शुरू करता है.
And then uprises other people.
तो फिर कुछ लोग और भी खड़े होते हैं.
And they're miracle workers too.
और उनके मौजजात भी काम करते हैं.
But who was first?
लेकिन पहले कौन था?
Moses.
मूसा.
Who was second?
दूसरा कौन था?
Jannes and Jambres.
ये दोनों जादूगर Jannes और Jambres.
Who was first?
पहले कौन था?
William Branham.
William Branham.
When were the other sign workers?
और दूसरे जो निशान और मौजजात दिखाने वाले?
Afterward.
इसके बाद.
Who had a message?
जिसके पास पैगाम था?
Moses with the spirit of Elijah.
आप जानते हैं कि एलिया की रूह में मूसा के पास पैगाम
the
था.
Others are working miracles.
और दूसरे जो वो भी मौजजात कर रहे हैं.
What did the Bible say?
बाइबल क्या कहती है?
There will be false Christ.
हमने देखा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे.
False anointed ones.
और जो झूठे मसीह के नीचे होंगे.
That will lead the people away.
जो कि लोगों को गुमराह कर देंगे.
And now the Bible says.
और बाइबल कहती है.
As it was in the days of Moses.
जिस तरह के मूसा के दिनों में था.
He was a prophet.
वहाँ एक नबी था.
And other sign workers.
और दूसरे निशान दिखाने वाले भी.
Now why would this be?
ऐसा क्यों होगा?
Why would God do this?
खुदा ऐसा क्यों करेगा?
Revelations.
मुकाशवा की किताब.
Chapter 3.
उसका तीसरा बाब. मुकाशवा की किताब उसका तीसरा बाब.
Okay, hold your place in Revelations 3.
तीसरे बाब में जरा अपना हाथ रखिए, निशान रखिए.
Yeah, hold it in chapter 3 now.
तीसरे बाब को सामने रखे.
I forgot to read something to you I wanted to read.
मैं एक हवाला भूल गया जो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ.
When Jesus said there would be false Christ,
जब यीशु ने कहा कि बहुत से झूठे मसीह होंगे,
that was Matthew 24:24.
मत्ती की इंजील 24वां बाब और 24वीं आयत में हमने पढ़ा.
Verse 25, he says, "Behold, I have told you before."
उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले से खबरदार कर दिया है.
And in Matthew 7:15 was where he told them before.
और ये वो जगह है मत्ती की इंजील 7वें बाब 15वीं आयत में जहाँ उसने पहले से उन्हें आगाह किया.
And in Matthew 7:15 he says.
और मत्ती की इंजील और उसका सातवां बाप और उसकी पंद्रहवीं आयत में यूं लिखा है,
Beware of false prophets,
झूठे नबियों से खबरदार रहो,
which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िये हैं.
You shall know them by their fruits.
उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे.
Do men gather grapes of thorns or figs of thistles?
क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट के तारों से अंजीर तोड़ते हैं?
Even so, every good tree bringeth forth good fruit.
इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है.
But a corrupt tree brings forth evil fruit.
और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है.
Now, keeping our subject in mind,
अपने मज़मून को ज़हन में रखते हुए,
we find the fruit is not their supernatural ministry.
हम देखते हैं कि उनका फल जो है, ये वो खिदमत नहीं है जो खुदा चाहता है.
We find that a group of people came to Jesus.
हम देखते हैं कि कुछ लोग यीशु के पास आए.
Lord, Lord,
खुदावंद खुदा,
in your name we've performed mighty miracles.
हमने तेरे नाम से बहुत से मौजजात किए हैं.
We've cast out devils.
हमने बदरुओं को निकाला है.
And he said, you workers of iniquity, I never
ने कहा बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी.
But they were anointed.
लेकिन उन पर मसा था.
They were performing the supernatural.
और वो मौजजात कर रहे थे.
And Jesus said, I don't even know you.
उसने कहा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी.
So now, why would these things happen?
ये ऐसा क्यों वकू में आएगा?
Revelations 3:17.
मुकाशफा की किताब तीसरा बाब और उसकी सत्रहवीं आयत.
This is under the Laodicean church age.
ये लुदिकिया की कलीसिया के जमाने में है.
Which is the seventh of seven churches of Asia.
जो के एशिया की सात कलीसियों में से सातवां जमाना है.
And their condition is seed or prophetic of ages to come.
और उनकी हालत ऐसे एक बीज के मानद है जो आने को था, जो पैदा होने को था.
And the earth is in the age of Laodicea right now.
और जमीन की हालत लुदिकिया की कलीसिया जैसी है, लेकिन बीज जो आने वाला है उसकी हालत और है.
Verse 17.
उसकी 17वीं आयत.
Because thou sayest, I am rich and increased with good and have need of nothing.
और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुताज नहीं.
And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked.
और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार, गरीब, अंधा और नंगा है.
Now this is prophecy.
ये पेशनगोई है.
Almost 2,000 years ago.
2,000 साल होने को हैं.
God said the last age is going to be blind.
खुदा ने कहा कि आखिरी जमाने की कलीसिया जो है ये अंधी हो जाएगी.
And this of course is the Pentecostal age.
और हम इसको पेंटिकॉस्टल जमाने के साथ तशबीह देते हैं.
How is he going to blind the Pentecostal believers?
तो पेंटिकॉस्टल के ईमानदारों को कैसे अंधा हो जाना है? कैसे अंधे होंगे?
A true prophet performs the supernatural.
जो हकीकी नबी है वो मौजज़ात और खुदा की कुदरत को जाहिर करता है.
And he has a message.
और उसके पास कलाम भी है.
And then some of their boys.
और कुछ दूसरे लोग.
We perform the supernatural.
और हम भी ये मौजज़ात करते हैं.
We heal the sick.
हम बीमारों को शफा देते हैं.
We cast out devils.
हम बदरुओं को निकालते हैं.
We even raised the dead one time.
और एक दफा हमने मुर्दे को भी जिंदा किया.
We've got God with us.
और हम जानते हैं कि खुदा हमारे साथ है.
But who had the message?
लेकिन पैगाम किसके पास है? समझाइए.
As it was with Jannes and Jambres.
जिस तरह के ये जैनस और जैम्ब्रिस के पास भी मौजज़ात की, पर पैगाम किसके पास था? नबी के पास.
There is a message to get a people ready for a rapture.
इसलिए इस बात की जरूरत है कि कोई ऐसा आदमी हो जो लोगों को उठाए जाने के लिए तैयार करे.
Part of that message is Revelations 18:4.
और ये पैगाम जो है मुकाशफा 18 बाप और चौथी आयत के साथ इसका तल्लुक.
Come out of her, my people.
आए मेरे लोगों, उस उम्मत में से निकल आओ.
That you be not a partaker of her plagues.
और जिसके ताकि तुम आप हलाकत के फरजंद ना बन जाएं.
Because I'm going to judge those church systems.
क्योंकि मैं इन तंजीमों के हालात की पर अदालत लाने को हूँ.
God is calling a people out.
और अपने लोगों को खुदा उसमें से निकल आने के लिए बुलाता है.
We are in the age of the third exodus.
हम तीसरे खुरूज के वक्त में हैं.
And there's a very important event with each exodus.
और इस हर खुरूज के साथ एक अजीब वाक्या जो है नमूदार हुआ है.
The book of Exodus,
अगर हम खुरूज की किताब में पढ़ें,
God said,
खुदा ने कहा,
I have heard the cries of my people Israel.
मैंने अपने बनी इसराइल के रोने धोने को सुना है.
And I have come down to deliver them.
और अब मैं नीचे उतरा हूं ताकि उनको रिहाई दूं.
Moses, I'm sending you.
उसने कहा, मूसा, मैं तुझे भेज रहा हूँ.
How did God come down?
ओ, खुदा किस तरह से नीचे आया?
In a prophet.
एक नबी में.
Now that's the first exodus.
ये पहला खुरूज है.
He called a nation out of a nation.
जब उसने एक कौम को, यानी बनी इसराइल को, मिस्रियों की कौम में से निकाला.
He called Israel out of Egypt.
उसने इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला.
Nation out of a nation.
कौम कौम में से अलग की गई.
Now the second exodus.
दूसरा खुरूज.
This is the time of Jesus Christ.
ये खुदावंद यीशु मसीह का जमाना है.
He identified himself as son of man.
उसने अपने आप को इब्ने आदम के तौर पर जाहिर किया.
Moses said.
मूसा ने कहा.
The Lord your God will raise up a prophet like unto me.
उसने कहा कि खुदावंद मेरी मानत मेरे भाइयों में से एक नबी पैदा करेगा.
Jesus came as a prophet.
आप जानते हैं कि यीशु इब्ने आदम बनकर नबी बनकर आया.
God was in Christ.
और मसीह के अंदर खुदा मामूर था.
So again God came down.
और खुदा फिर नीचे आया.
To help the church turn a corner.
ताके इस कलीसिया को एक मोड़ की तरफ लाए.
And it's the second exodus.
तो ये मोड़ जाना कलीसिया का जो है, ये
church,
ये दूसरा खुरूज है जब खुदा कलीसिया में से कलीसिया को निकालता है.
He calls the Christian church out of the Jewish church.
उसने मसीह कलीसिया को यहूदी कलीसियों में से जाहिर लग किया.
And now we're in the last days.
अब हम आखिरी दिनों में हैं.
And you may not understand it.
और शायद आप इसको समझ ना पाएं.
But God has come again.
लेकिन खुदा दोबारा वापस आया है.
Who's he working through?
और किस में से होकर काम करता है?
A prophet.
एक नबी में से.
And now he's calling a bride out of the church.
अब वो दुल्हन को कलीसिया में से बुला रहा है.
Because the whole church has organized itself.
क्योंकि पूरी कलीसियाओं ने अपने आप को تنظیم کر لیا بنا لیا
denomination is not of God
یہ جو تنظیمیں ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں
man creates denomination
یہ انسان نے بنائی ہوئی ہیں
the shadow is in the old testament
ہم نے اس کا عکس جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں دیکھا
God was leading Israel
خدا اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا
through the prophets
نبی کے وسیلہ سے
and then Israel says oh we want a king like the other nations
اور جب وہ اس کی رہنمائی نبی سے کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نبی دی ضرورت نہیں ہن سانو بادشاہ چاہیے
God speaks through Samuel
تو اس نے سموئیل سے بات کی
I'm your king
میں تیرا بادشاہ ہوں
oh we want you
ہم تجھے بھی چاہتے ہیں خدا
but we also want a king
پر ایسی چیز ہونی چاہیے جو بندے دی صورت ساڈے سامنے رہے
be like the other ones
اور ایسا ہی ہمیں بھی ہونا چاہیے
and so God says to Samuel tell him go ahead get your king
تو پھر خدا نے نبی سموئیل کو کہا کہ جاؤ اور بادشاہ بنا لو
and Samuel says But Lord they've rejected me.
لیکن انہوں نے کہا خداوند نے میری بات کو نہیں مانا سموئیل کو.
God said to Samuel.
اس نے سموئیل سے کہا
They have not rejected you, they've rejected me.
انہوں نے اگر تیری بات کو نہیں مانا تو انہوں نے میری بات کو نہیں مانا.
I wanted to be their leader.
میں ان کا جو ہے رہنما ہونا چاہتا تھا.
But they wanted their district presbyter.
لیکن وہ کوئی district presbyter چاہتے تھے.
They wanted their local bishop.
وہ اپنا local bishop رکھنا چاہتے ہیں.
They wanted their pope and their cardinal.
اور وہ اپنے پوپ اور کارڈینل کو بنانا چاہتے ہیں.
They wanted a man over them.
وہ اپنے اوپر آدمی کا تسلط چاہتے ہیں.
God said I want to be over there
aur main wahan aadmi ki jagah rehna chahta tha
there is the shadow of denomination
hum dekhte hain tanzeemon ke andar us saaye ko jo khuda lana chahta hai
there is to be no man above the pastor in the local church
local church ke andar pastor ke upar aur koi aadmi tasallut nahi rakhta hai
amen
amen
chapter 3 let's go back to 2 timothy again
aaiye dobara dusre timotheus ke andar jaye chapter 3
yeah
uska teesra bab دوسرا تیموتھیس تیسرا باب
Now we read about in verse 1 that it said in the last days
پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ جان رکھ کے آخری زمانہ میں
and then in verse 7 and 8 we read about Jannes and Jambres
اور ساتویں اور آٹھویں ہم نے جینس اور جیمبریز کے بارے میں پڑھا
they will be workers of miracles
وہ معجزے کرنے والے آدمی ہوں گے
but they are reprobate concerning the truth
لیکن وہ سچائی کی مخالفت میں ہوں گے
I don't know whether American evangelists on television reach Pakistan I don't know
مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ ٹیلی ویژن پر جو پروگرام آتے ہیں ان میں سے کسی امریکن مبشر کا پیغام آپ نے سنا ہو ٹیلی ویژن پر
but once in a while I look at an American evangelist on television
لیکن چونکہ وہاں اس مبشرانہ خدمت کا ٹیلی ویژن پر ذریعہ ہے کبھی کبھی میں کسی ایونجلسٹ کو دیکھتا ہوں
and they are coming up with the craziest doctrines
اور ان کے پاس بڑی عجیب سی تعلیم ہے
no more like the bible than nothing
اس کا بائبل کے ساتھ بالکل کوئی ملاپ نہیں ان چیزوں کو ہم بائبل کے اندر ایسا نہیں پاتے ہیں
If you'll send me $10
اگر آپ مجھے $10 وہ کہتے ہیں اگر آپ مجھے $10 بھیجیں
I'll send you a bottle of holy water from the river Jordan
تو جو یردن سے میں مقدس پانی لے کر آیا ہوں وہ میں آپ کو بھیج دوں گا
And you can pour it on yourself and be healed
اور آپ اس کو اپنے اوپر ڈال کر شفا پا جائیں گے
Find that in the Bible
اس کو بائبل میں دیکھیں کہیں بائبل میں ایسا ہے یہ کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا
It's not by the water in Jordan it's by his stripes you're healed
یہ یردن کے پانی سے نہیں ہے یہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے
All of this kind of nonsense
یہ ہر طرح کا جو بیہودی باتیں ہیں
what purpose
کس مقصد کے لیے
money
پیسے کے لیے
yeah that's what they want
یہ وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کیا جائے
but they're blind concerning the truth
لیکن سچائی کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہیں
chapter 4
اس کا چوتھا باب میتھیو
yep no for second timothy still
second دوسرا تیموتھیس اس کا چوتھا باب
I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ who shall judge the quick and the dead at his appearing and at his kingdom
میں پہلی آیت سے پڑھوں گا اور خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اس کے ظہور اور اس کی بادشاہی کو یاد دلا کر تجھے تاکید کرتا ہوں
preach the word
کہ تو کلام کی منادی کر
be instant in season and out of season
وقت اور بے وقت مستعد رہ
reprove rebuke exhort with all long suffering and doctrine
ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے
For the time will come when they will not endure sound doctrine.
ملامت اور نصیحت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے.
But after their own lust shall heap to themselves teachers having itching ears.
بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے.
And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables.
اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے.
A fable is a story with with a good moral to it.
Kahani jo hai ek aisi kahani hai jiska acha aage jaakar hum natija dekhte hain.
It sounds very sweet.
Aur ye badi meethi aur achhi lagti
hai. Like children's stories.
Jis tarah ke bachchon ko hum kahaniyan sunate hain bachchon ki.
It has a good moral to it.
Aur iska ek acha maqsad bhi hai.
But God wants to point out sin in the church. God wants to point out sin.
Lekin khuda कलीसिया के अंदर गुनाह की तरफ इशारा करना चाहता है।
I was listening to an interview on television.
मैं टेलीविजन पर एक इंटरव्यू सुन रहा था।
And this is one of the best known evangelists in America.
और अमेरिका के अंदर ये सबसे बड़ा मुबशर है।
And the reporter asked him, "Why is it you are so popular?"
और उसके इंटरव्यू लेने वाले ने उसे कहा कि तू क्यों इस कदर मशहूर है?
How is it so many people follow you?
ये किस तरह से है कि बहुत सारे लोग तेरी पैरवी करते हैं?
And he started laughing.
और उसने हंसना शुरू किया।
And he said that's simple.
तो उसने कहा ये बड़ा आसान है।
I never preach against sin.
और उसने कहा कि मैंने गुनाह के खिलाफ कभी मुनादी नहीं की थी, खिलाफ मेरे कौन होएगा?
And so the people love him.
तो लोग इस बात को बड़ा प्यार करते हैं।
Now false Christ.
झूठे मसीह।
Now get this picture.
इस तस्वीर को अपने ज़हन में उतारिए।
You are a body.
वो आप चूंकि आप एक जिस्म है।
Inside of that is spirit.
उसके अंदर एक रूह है।
Inside of that is soul.
और उस रूह के अंदर एक जान है।
New birth takes place on the soul.
ये नई पैदाइश का तजुर्बा जो है ये जान पर होता है।
A person can have a genuine Holy Ghost anointing on their spirit.
एक आदमी अपनी रूह पर एक बिल्कुल दुरुस्त रूल कुदस का नजूल और तजुर्बा रख सकता है।
yet can be not converted in the soul.
लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उसकी जान पर कोई असर नहीं क्योंकि गुनाह याली कर रहे हैं।
Now some of you older ones that have been around Pentecost very long.
आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे पुराने लोगों में से जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस के साथ रहे हैं।
You know that you have seen anointed people.
आपने वहाँ मसा के नीचे लोगों को देखा।
Speaking in tongues.
जो कि ज़ुबानों में भी तारीफ करते हैं।
Manifesting the gifts.
और उन नेमतों का भी ज़ुहूर होता है।
And live in adultery.
लेकिन ज़नाकारी भी करते हैं।
How can that be?
ये कैसे है?
It's the Holy Ghost on the spirit.
अभी तक रूह तो उनके ऊपर है।
No conversion on the soul.
उसका मतलब है कि उनकी जान जो है जिहड़ी गुनाह कर दी ओदी तब्दीली नहीं हुई।
By faith they got a hold of the Holy Ghost.
उन्होंने ईमान से रूह कुद्दस तो पाया है।
They perform the supernatural.
और वो मौजजात भी करते हैं।
But inside they're unchanged.
लेकिन उनकी जान है उसके ऊपर अभी कोई तब्दीली नहीं आई।
So just like Balaam.
इसी तरह बलाम के साथ हुआ।
They'll use the gift for their benefit.
और वो अपने फायदे के लिए इन नेमतों को इस्तेमाल करेंगे।
Look at me, I'm spiritual.
मुझ पर जब आप देखें तो मैं रूहानी नजर आऊंगा। मैं गैर ज़बानों में बोलता हूँ।
Yesterday I put my hands on somebody and they were slain in the spirit.
और जब मैंने yesterday कल किसी अगर मैं किसी पर हाथ रखता हूँ तो वो रूह के अंदर मुतवाला हो जाता है।
Trying to draw people to themselves.
इसलिए कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करे।
But the genuine anointed man.
लेकिन जो हकीकी मसा के नीचे है।
He does not try to draw you to himself. He points you to Christ.
वो अपनी तरफ आपको मुतवज्जो नहीं करेगा, बल्कि खुदा के मसीह की तरफ आपकी तवज्जो को लगाएगा।
In the book of Joel it says.
योएल नबी की किताब में लिखा है।
In the last days,
आखरी दिनों में,
I will pour out of my spirit.
मैं अपनी रूह को डालूंगा।
Upon all flesh.
सारी रूह, सारे बदनों पर, सारी ज़िंदगियों पर अपनी रूह को डालूंगा।
Then he says, and my sons and daughters will do this.
और उसने फिर ये कहा कि मेरे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे।
And your sons and daughters will do that.
और आपके बेटे बेटियां भी नबूवत करेंगे।
Same spirit on all of them.
एक ही रूह जो है सब पर उसका एक ही मसा है।
Joel 2:23.
योएल दूसरा बाप उसकी 23वीं आयत को पढ़ें, उसकी 28वीं आयत को अगर पढ़ें,
you can read it for yourself.
आप अपने लिए इसको पढ़ सकते हैं।
When Jesus using rain as a type of the Holy Ghost.
जब यीशु बारिश को रूल कुदस के साथ मुशाबत देता है।
The Bible says.
बाइबल कहती है।
The rain falls on the just and the unjust.
बारिश जो है वो ईमानदारों और गुनाहगारों दोनों पर बरसती है।
Converted Holy Ghost saints can come and sit in a message, sit in the a church.
आप देखेंगे कि कुछ लोग मुकद्दस किए हुए रूल कुद्दस की वसीला से कलीसिया के अंदर आकर बैठेंगे।
And a religious unconverted man can come and sit down right beside him.
और मजहबी लोग जो अभी तक तब्दील नहीं हुए वो भी यहाँ आकर बैठ सकते हैं।
And when the preacher begins to preach under the anointing.
और जब खादम उस मसा के नीचे बोलना शुरू करता है।
And the presence of God comes in the church.
और खुदा की हजूरी जो है वो कलीसिया पर आती है।
Both of them will raise their hands.
तो दोनों अपने हाथ खड़े करेंगे।
Both of them will worship God.
और दोनों ही खुदा की प्रस्तुति और स्तुति करेंगे।
One will go home and pray and thank God.
और एक जो है वो सताइश और प्रस्ताइश करता है वो घर चला जाएगा.
The other one will walk out, light up his cigarette and go home.
और दूसरा जो प्रस्ताइश और सताइश करेगा बाहर निकल जाएगा सिगरेट लाके मुंह चपा लेगा.
But both of them enjoyed the service.
लेकिन उन दोनों ने इस इबादत में तो हिस्सा लिया और
उसे the rain falls on the just.
और उन्हें बरकत पाई क्योंकि खुदा की बारिश दोनों ही पर बरसती है गुनाहगार पर भी और ईमानदार पर भी.
Hebrews chapter 6.
इब्रानियों उसका छठा बाब.
Chapter 6 verse 7.
छठा बाब और उसकी सातवीं आयत.
For the earth drinketh in the rain that cometh oft upon it and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed receiveth blessing from God.
क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार-बार होती है और उसके लिए कारामद सब्जियां पैदा करती है.
But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burnt.
जिसकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है और वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है और झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो ना मकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है.
Here's the herbs, something we can eat.
कुछ यहाँ जंग बूटियां हैं जिनमें से हम कुछ खा सकते हैं.
And here's thorns and thistles.
और यहाँ हम कांटेदार झाड़ियां देखते हैं.
Now let's say there is no rain for weeks and weeks.
देखें कि शायद महीनों और हफ्तों तक ये झाड़ियां
good plant.
अच्छा पौधा है.
It's there so we can eat it.
ये इसलिए वहां है कि हम उसमें से खाएं.
No rain.
लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई.
And you can just imagine now.
अब आप ख्याल कर सकते हैं.
We're painting a picture.
हम एक तस्वीर बना रहे हैं.
The poor little herb.
छोटे छोटे पौधे जो हैं अब वो मरते हुए नजर आते क्योंकि बारिश नहीं हुई और उन्होंने मारी चली और पानी को बुला रहे हैं बारिश
Now
को मांग रहे हैं. आइए जरा इन कांटेदार झाड़ियों को और उनको भी देखें वो भी उसी तरह बिल्कुल सांस ले रही है क्योंकि बारिश नहीं हुई. वो भी उसी तरह बारिश चाहती हैं.
And then the rain falls.
और फिर बारिश होती है.
And the little herb raises up its leaves.
और छोटे पौधे जो हैं वो बढ़ जाते हैं.
And the little thorn raises up its
और ये छोटी झाड़ियां जो हैं वो भी बढ़ती हैं.
The rain's falling on the just and the unjust.
क्योंकि दोनों के ऊपर बारिश हो रही है गुनाहगार और ईमानदार पर.
What's the difference?
इसके अंदर फर्क क्या है?
The seed inside.
उसके अंदर जो बीज है उसके अंदर फर्क है.
If the seed of the word has been planted in that heart, it'll bring forth Christ.
अंदर कलाम का बीज बोया जाए तो वो मसीह को बाहर लाएगा.
But if in that soul is nothing but creeds and doctrines of man,
अगर उस जान के अंदर कुछ नहीं है स्वास्थ्य के इंसान की बनाई हुई रस्म रवाज और तालीम,
that's the most it can bring forth.
तो वो अपना आप बाहर ला सकते हैं.
But both rejoice in the blessings.
लेकिन दोनों बड़ी हमदो सताए जो बड़े नारे मार रहे हैं.
But it can't bring forth any more than the seed that's in it.
इसके अलावा वो कुछ नहीं ला सकते क्योंकि कोई बीज अपनी जिनस के बगैर फल नहीं लाता जैसा बीज वैसी जिनस.
And then the prophet told us, here's the way you know the spirits.
नबी ने हमें ये बताया कि रूह की परख कैसे हो सकती है.
He said, watch the motive and the objective.
गौर कीजिए उन मकामों पर और उन तमसीलों पर.
Motive.
आपके ख्यालात और एक खास मकाम.
Let's say that I'm a song leader.
You can एक song leader हूँ, meeting leader करने
वाला. Standing in a church.
जो कि चर्च के सामने खड़ा होता है.
And way down deep inside of me.
और मेरी दिल की गहराई के अंदर.
I want all the people to kind of look at me.
तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं सामने खलोता तो लोग की आज मेरे वाली भी.
And I've got a good voice.
तो क्योंकि मेरी आवाज बड़ी अच्छी है.
And I want people to hear my good voice.
और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इस खूबसूरत आवाज को सुनें.
And I find if I do certain things.
और मैं ये भी देखता हूँ कि अगर मैं कोई बातें करूँ
काम. People begin to react.
ताकि मेरी तरह ही लोग जो हैं वो भी करना शुरू हो जाएं.
Certain things.
और मैं फिर ऐसी चीजें जो हैं वो उनका अपने मुंह से इजहार करता हूँ.
And I can get a certain reaction.
और मैं शोर शराबा डालता हूँ ताकि लोग भी उसी तरह करना शुरू करें.
But I'm anointed with the wrong spirit.
तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसी रूह जो कि खुदा की रूह नहीं है, गलत रूह का मसा है.
Because I'm doing it to please me.
क्योंकि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ.
To glorify me.
ताकि मेरा जलाल जाहिर हो.
But the song leader should have one motive.
लेकिन song leader जो है गीत गाने वाले आगे वालों का एक ही मकसद होना चाहिए.
Not to display himself.
अपना इजहार करना नहीं.
Or his voice or his music.
अपनी आवाज या अपने साजों को.
But to bring the whole congregation into worship.
एक पूरी जमात को वो प्रस्तुति के ताबे लाए.
Not just one or two in front that they've got an agreement with.
एक दो बंदे नहीं जड़े उधर नालागे मुत्तफिक ने कहने कर ये.
But bring the whole congregation into worship.
पूरी जमात को वो प्रस्तुति के रूह के ताबे लाए.
For one reason.
एक बात के लिए.
To get them ready to receive the word.
ताकि वो इस बात के लिए तैयार हों कि खुदा के कलाम को कबूल करें.
The primary purpose of every church service is the word.
ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو پہچانے اور قبول کریں.
All the powers of God,
خدا کی ساری قدرت,
all the blessings of God,
خدا کی ساری برکات,
all the glories of God,
خدا کا جلال
are laying in the word,
اس کلام کے اندر ہے,
hidden to the unbeliever,
جو کہ غیر ایمانداروں کے آنکھوں سے پوشیدہ ہے,
to be revealed to the believer.
لیکن ایمانداروں کے سامنے وہ پوری طرح نمایاں ہے.
It's all in the word.
یہ سب کچھ کلام کے اندر ہے.
So the whole service should be forming around the word.
اس لیے ساری عبادت کو کلام کے ساتھ منسلک کرنا ہے.
Now, Pentecost has a tendency now, and I was in Pentecost.
میں پینٹیکاسٹ میں تھا اور پینٹیکاسٹ کی اب جو اظہار ہے وہ یوں ہے.
So I'm not standing outside pointing a finger.
میں یہاں اس لیے کھڑا نہیں ہوں کہ میں کسی کی اوپر انگلی اٹھاؤں.
I was in there.
میں وہاں تھا.
But it has changed.
لیکن اب چونکہ یہ میں تبدیل ہو چکا ہوں.
I'm old enough to have seen the difference.
میں اب اس قدر عمر میں ہوں کہ میں فرق کو دیکھ سکتا ہوں.
When I was a young man,
جب میں ایک جوان آدمی تھا,
Pentecost preached holiness.
اور تو پینٹیکاسٹ نے مقدس ہونے کا منادی کی.
Get that television out of your house.
اور اس نے کہا ٹیلی ویژن آپ کے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے.
Woman, don't you cut your hair or wear makeup.
اور عورتوں کو اس نے کہا میک اپ نہیں کرنی اور بال نہیں کٹوانے.
In America they would say, now woman, don't you dare put on a garment that pertains to a man. Don't wear slacks.
تو امریکہ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے جو مرد پہنتے ہیں, یعنی پینٹ.
And don't cut your hair.
اور اپنے بال نہ کاٹو.
No earrings.
No
wash your face.
اور اپنے چہرے کو دھو ڈالو میک اپ کو.
But now it's okay.
لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہے, بال بھی کٹے ہوئے ہیں, پینٹنگ بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے.
What happened?
کیا ہوا ہے؟
The word has moved on.
کیونکہ خدا کا کلام وہاں سے آگے بڑھ گیا ہے.
And they have not moved with the word.
یہ گمراہ کرنے والی روح کا اثر
ہے. ہاں, he says that this is they have been taken away, you know. ہاں,
yeah, the Israel in the Old Testament,
پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل,
they had to when the pillar of fire moved,
وہ آگ کے ستون جب چلتا تھا تو وہ بھی اپنے خیمے کھوار چلتے تھے.
When the pillar of fire stopped, they stopped.
اور جہاں وہ آگ کا ستون رک جاتا تھا وہیں وہ بھی رک جاتے تھے.
When the pillar of fire moved, they moved.
پھر جب pillar of fire چلتا تھا وہ بھی چلتے تھے.
And that's the same way the church is.
اور اسی طرح آج کلیسیا کو بھی ہونا چاہیے.
When God is unveiling the word,
جب خدا اپنے کلام کو ظاہر کرتا ہے,
move with the revelation.
اس مکاشفے کے ساتھ آگے بڑھ جائیے.
Then you may pause for a while.
اور پھر شاید آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں.
God opens up more of the word.
خدا اور مکاشفہ کھولتا ہے.
Move with the revelation.
اس مکاشفے کے ساتھ آگے بڑھیے.
The last time the pillar of fire moved,
اور جب آخری دفعہ آگ کا ستون چلا,
Pentecost had built a denominational wall around themselves.
تو انہوں نے اپنے ارد گرد تنظیم کا ایک دھارا جو ہے وہ باندھ لیا.
Think back when the three wise men were coming to Jesus.
یاد کیجئے کہ جب تین شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے,
they were following a star.
اور تو وہ ایک ستارے کی رہنمائی میں آ رہے تھے مجوسی.
I remember in Revelations there are 7 stars in the hand of Jesus.
اور آپ یاد کیجئے کہ مکاشفے کے اندر 7 ستارے جو یسوع کے ہاتھ میں ہیں.
He said the 7 stars are the messengers to each age.
تو اس نے کہا کہ یہ 7 ستارے ان 7 کلیسیاں زمانوں کے فرشتے ہیں.
So they were following this star.
گو وہ اس ستارے کی اور جب وہ تنظیمی ہیڈ کوارٹر کے پاس پہنچے,
and they said, oh, these people will understand.
تو انہوں نے کہا یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ بادشاہ ہے.
They went into Jerusalem.
تو وہ یروشلم کے اندر داخل ہوئے.
What is this we hear about the Christ?
تو انہوں نے کہا ہم یہاں مسیح کو پانے آئے ہیں.
I said, we don't know anything.
ہمیں تو اس بارے کا کوئی پتہ نہیں ہے.
And they looked around and they couldn't even see the star.
تو انہوں نے جب دیکھا تو ستارہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا, وہ بھی انہیں نظر
میں. They went out of the wall of the city.
اور جب وہ اس شہر کی دیوار سے باہر گئے,
there was the star.
تو ستارہ وہاں کھڑا تھا.
And it led them right onto the Christ.
اور ان کی رہنمائی کر کے ان کو درست جگہ پر لے گیا.
You won't find it inside the walls.
آپ اس کو دیواروں کے اندر مشنوں کے اندر نہیں دیکھیں گے.
Come out of those systems.
اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا.
Amen.
Amen.
Motive and objective.
ہم دیکھ رہے تھے کہ مقاصد کیا ہے اور آگے اس کا اصول کیا ہے.
Check yourself.
اپنے آپ کو چیک کیجیے.
Whatever you want to do.
آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں.
Especially a position in the church.
کلیسیا کے اندر آپ کس مرتبہ کو چاہتے ہیں.
Look at your own motive and objective.
اور اسے اپنے مقاصد اور اپنی خدمت کے تابع لائیں.
I've been called on to stand up here and pray.
مجھے بلایا گیا کہ میں یہاں آؤں.
What's my motive?
تو میرا مقصد کیا ہے.
What's my objective?
جو کہ میرا ایم ہے.
Prayer is to be talking to God.
دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں.
But am I going to try to impress the people with how much I can shout?
और अगर मैं ये जाहिर करना चाहूँ बड़ी जोर से पुकार कर लोगों को कि मैं ऐ कुछ जानना?
Am I praying to try and get a reaction out of the people?
क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों का जिहड़ा वे ओ ध्यान अपनी तरफ वाजिब करा पे की कह रहा है?
Motive and objective.
आप इन दोनों बातों को याद रखिए मकसद और आगे उसका पूरा होना.
Am I praying that God will hear my prayer?
क्या मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि खुदा मेरी दुआ का जवाब दे?
In the past several meetings I've had here in various cities,
guzri abadat mein jo maine mukhtalif shaharon ke andar aur kasbon ke andar ki,
we've talked about various false doctrines that are commonly accepted in the church.
Kalisiya ke andar mukhtalif jhooti taleeme jo aasani se log qubool kar rahe the humne uska zikr kiya.
Be able to explain them all.
मैं अब इस सारे को तो बयान नहीं कर पाऊंगा.
But one of them was the oneness of God.
लेकिन उनमें से एक खुदा की वाहदनियत है.
Not three persons in a Godhead.
तीन शख्स खुदा के अंदर नहीं बल्कि एक है.
But one God manifesting in three, we'll call it offices.
एक खुदा तीन शख्सियतों में से जो जहार करता है उसका वो दफ्तर.
And then understanding water baptism.
और फिर हमने देखा कि पानी का बपतिस्मा क्या है.
Matthew 28:19 versus Acts 2:38.
मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और 19वीं आयत और इमाल दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत.
Jesus said, Father, Son, Holy Ghost.
बाप यीशु ने कहा बाप बेटा और रूह कुदस.
Peter said, baptism in the name of the Lord Jesus Christ.
तो पत्रस कह रहा है कि खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो.
Is there a conflict?
इसके अंदर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है? इसके अंदर कोई बेसमझी और ना समझने वाली बात नहीं है.
When Matthew mentioned that, excuse me, when Jesus mentioned it in Matthew,
जब यीशु ने मत्ती के अंदर ये हुक्म दिया,
he said to be baptized in the name.
तो इसका मतलब था कि नाम में बपतिस्मा लें,
singular,
जो कि वाहिद है,
one name,
एक नाम है,
of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost.
बाप और बेटे और रूह कुदस का एक नाम है, वो यीशु है.
The Bible says that Jesus was the fullness of the Godhead in a body.
क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु जो है वो खुदा की पूरी मामूरी का कलीसिया के बदन के अंदर जहूर था.
What is the Godhead?
ये वादनियत क्या है?
Father, Son, and Holy Ghost.
बाप बेटा रूल कुदस.
It was all in one body.
ये एक ही जिस्म के अंदर थे.
And what was his name?
और उसका नाम क्या था?
Lord Jesus Christ.
खुदावंद यीशु मसीह.
So there is no conflict between Matthew 28:19.
इसके अंदर कोई झगड़ा नहीं है कि मालिच पलू पत्रस की कह रहा है तो यीशु ने की मत्ती 28:19 की है.
Many say it's okay for the woman to cut their hair.
बहुत सारे कहते हैं कि औरत के लिए बाल काटना ठीक है.
1 Corinthians 11 says she if she's going to cut it just a little bit she might as well shave it off.
तो उसने पहले करंथियों 11 बाब में लिखा है कि अगर औरत थोड़े बहुत बाल काट दिए तो उस तरह फराए सिर थे सर मुंडी के बराबर हो.
God wants a woman's hair uncut.
खुदा चाहता है कि औरत के लंबे बाल हों.
Let's go one more.
एक और आगे चलकर देखते हैं.
Now this one may disturb you a little bit.
शायद ये आपको थोड़ा सा परेशान करे जो मैं कहने को हूँ.
Romans chapter 5.
रोमियो पांचवां बाब. रोमियो का खत पांचवां बाब या वर्स
5:5.
पांचवां बाब उसकी पांचवीं आयत.
And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. 5:5.
Okay, I'm going. और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है.
Okay, now catch what it said.
गौर कीजिए कि उसने क्या कहा है.
The love of God enters you by the Holy Ghost.
खुदा का प्यार मोहब्बत हमारे दिलों में रूह कुदस के वसीला से डाली जाती है.
1 Corinthians.
पहला करंथियों
chapter 13.
उसका 13वां बाब. पहला करंथियों 13वां बाब.
Verse 1.
उसकी पहली आयत.
Though I speak with the tongue of men and angels,
अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं,
tongues of men,
आदमियों की ज़बानें,
that's known languages,
जो कि जानी पहचानी है उर्दू पंजाबी अंग्रेजी,
tongues of angels,
और फरिश्तों की ज़बानें,
that's unknown languages,
ये वो ज़बानें हैं जिनको हम समझ नहीं सकते हैं.
Though I speak with the tongue of men and angels and have not charity,
अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं,
how do we get charity?
ये मोहब्बत कैसे मिलती है?
The love of God is shed abroad by the Holy Ghost.
हमने देखा कि रूल कुदस हमें खुदा की मोहब्बत जो है वो रूल कुदस के वसीला से मिलती है.
Now here I am speaking in tongues of men and angels.
अब मैं फरिश्तों और आदमियों की ज़बानों के साथ यहाँ हूँ.
And I don't even have the Holy Ghost.
तो मेरे पास अगर मोहब्बत नहीं है तो रूल कुदस कोई नहीं है.
And yet many churches teach that speaking in tongues is the evidence that you do have the Holy Ghost.
Bahut sari kalisiyan jo hain wo ye sikhati hain ki ghair zuban mein bolna rool qudus ke baptisme ka nishan hai.
I believe in tongues.
Main ghair zubanon mein yakeen rakhta
hoon. I've spoken in tongues myself.
Main kai dafa ghair zubanon mein bola.
I'm not against tongues.
Main ghair zubanon ke khilaf nahi hoon.
But a person can speak in tongues.
Lekin aadmi jo hai wo ghair zubani bol sakta hai.
The same he can prophesy.
Aur wo peshgoi bhi kar sakte hain.
Cast out devils.
Aur shaitan ko bhi nikal sakte hain.
And still not have a true baptism of the Holy Ghost.
Lekin phir aisa karne ke bawajood bhi rool qudus ka baptisma usko sahi nahi hai.
So tongues is not the evidence that you do have the Holy Ghost.
ये गैर ज़बान बोलना इस बात का निशान नहीं है कि आप रूल कुदस से मामूर हो गए हैं।
Does that hurt your feelings?
क्या कोई इस बात से किसी को ठोकर तो नहीं लगी?
Because I know many churches teach that.
क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल बहुत सारी कलीसियों की यही तालीम है कि अगर गैर ज़बान नहीं मिली तो रूह ना मामूर नहीं हो।
But they teach it by a conclusion they have drawn.
उन्होंने जो एक नतीजा निकाल रखा है ये बुनियाद है ऐसी तालीम देने की।
They go through the book of Acts.
वो इमाल की किताब में जाते हैं।
Holy Ghost came. The Holy Ghost
जब रूल कुदस नाजल हुआ,
they spoke in tongues and magnified God.
और उन्होंने गैर ज़बानों में बोलकर खुदा की प्रस्तुति तज़ीम की।
Same thing happened again.
और फिर ऐसा ही हुआ।
Then the Holy Ghost came.
और रूल कुदस आया।
Doesn't say what they did.
तो ये नहीं बताता कि उसने क्या किया।
It just said, oh, we see they got the Holy Ghost.
तो उन्होंने ये देखा कि वो उनको रूल कुदस मिल गया।
And then so you say, oh, well, what did they see?
तो उन्होंने क्या देखा? आप कहेंगे उन्होंने क्या देखा कि उन्हें पता लग गया रूल कुदस।
Well, they must have seen tongues. That's what was over here.
तो शायद आप ये कहें कि चूंकि उन्होंने गैर ज़बानें बोली इसलिए हम जानते हैं कि रूल कुदस क्या है।
So that must be the evidence.
तो ये एक तहरीक है, ये एक नमूना है जो हमें टंग्स बोलने से गैर ज़बान से मिलता है।
Now let's apply it to what we see every day.
आइए इस बात के साथ इसको मिलाएं जो हर रोज का मुहारा मुशाहदा है जिसको
we
हम देखते
see
हैं।
People in our Pentecostal churches.
हम पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर अपने लोगों को देखते हैं
and they are speaking in tongues.
और वो गैर ज़बानों में बोल रहे हैं
and they still have the world.
और कलाम भी उनके पास है
maybe still living immoral
or immoral
immoral
aur shayad wo ghair fani zindagi guzarte ho
which testifies they don't have the holy ghost
to iske se nazar aata hai ki unke paas abhi tak rool qudus nahi hai
I'm not against tongues
main ghair zubanon ke khilaf nahi hu
I'm just trying to prove that you can have the holy ghost without speaking in tongues
main ye sabit karna cha raha hu batana chahta hu ki ghair zuban bole baghair bhi rool qudus mil jata hai
and you can get the holy ghost and speak in tongues
aur aapko rool qudus ghair zuban ke sath bhi mil sakta hai
but what you do with the word
lekin ghair zuban ya rool qudus pa lene ke baad kalam ke sath aapka kya ravaiya
hai the spirit of truth has come he'll guide you into all truth
to ke likha hai ki jab sachai ki rooh aayegi to wo sachai ki taraf tumhe mail karegi
so what you do with the word will testify what spirit is in you
aur jo kuch jis tarah se aap kalam ko samajhte aur istemal karte hain ye saboot hai ki kis tarah ka rool qudus aapke paas hai
the holy ghost in you will say amen to everything that's the truth
jo sachai hai को कबूल करेगा और आमीन कहेगा
Even though sometimes your mind is fighting against it.
अगर हो सकता है कि आपका ज़हन इसके बात के खिलाफ भी हो
Because tradition is up here.
क्योंकि यहां कोई अभी तंजीम का असर है
The Holy Ghost is down here.
लेकिन रूल कुदस यहां दिल के अंदर है
Amen.
आमीन.
Finished.
खत्म हो गया
Let's pray.
आइए दुआ करें
Lord Jesus,
प्यारे आसमानी बाप
I think we understand a little better about anointed ones at the end time.
खुदावंद हमने आखिरी जमाने के झूठे मसीहों के बारे में कुछ सीखा।
The rain falls on the just and the unjust.
हमने देखा कि बारिश दोनों पर गैर ईमानदारों और ईमानदारों पर बरसती है।
True and false can prophesy.
झूठे और सच्चे दोनों पेशगोई कर सकते हैं।
But it's what they're doing with the truth.
लेकिन उसके अंदर सच्चाई को हमें देखना है।
Are they reprobate to the truth?
ताकि वो सच्चाई के खिलाफ हैं।
Or is their Holy Spirit guiding him into all truth?
और क्या उनकी रूह उन रूल कुदस उनको सच्चाई की तरफ मायल करता है?
May each one measure themselves.
खुदावंद एक हर एक को अपने आप को जांचना सिखा.
And just say, God, where am I?
और ये दे परख दे के हम पहचाने खुदावंद मैं कहाँ हूँ?
And if I have the Spirit only on my spirit.
और अगर उस रूह का असर सिर्फ मेरी रूह पर है.
Then God, may you change me.
ओ खुदावंद तू मुझे तब्दील कर.
Bring me a true conversion.
नई तब्दीली के नीचे ला
bring a birth in my soul.
और मेरी जिंदगी के अंदर नई पैदाइश ले
we ask it in Jesus name.
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं
Amen.
आमीन
God bless you.
खुदावंद आपको बरकत दे आइए जी